नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज बताया कि विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची के बीच पिछले कुछ दिनों में 3 वार्ताएं हो चुकी है। श्री जायसवाल ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच आखिरी वार्ता में भारत की जहाजरानी और ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जायसवाल ने आज नई दिल्ली में मीडिया को यह जानकारी दी।
पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा।
विदेश मंत्री ने बताया कि ईरान में लगभग 9,000 भारतीय नागरिक हैं और भारत सरकार ने कई भारतीयों को तेहरान से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है।
जब युद्ध शुरू हुआ तो हम लोगों ने बहुत सारे लोग जो तेहरान में थे उनको हम लोगों ने वहां से अन्य शहरों में हम जाके उनको ले गए ताकि उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। जो भी भारतीय नागरिक ईरान से वापस आना चाहता है हमारे एम्बेसी से वो संपर्क करें। हम लोगों ने एक एडवाइजरी जारी की है खास उन लोगों के लिए जो कि लैंड बॉर्डर से आर्मेनिया और अजरबैजान को पार करके वहां से वापस भारत आना चाहते हैं। तेहरान में जो हमारा मिशन है वो पूरी तरह से कार्यरत है और हमारे भारतीय समुदाय के साथ जुड़ा हुआ है उनके हित के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए।
लोकसभा में वर्ष 2025-26 की पूरक अनुदानों की मांग पर चर्चा शुरू हो गई है। इसमें 61 अनुदान मांगे शामिल हैं। सरकार ने 2,81,000 करोड़ रुपए से अधिक के अतिरिक्त व्यय को मंजूरी देने की मांग सदन से की है। चर्चा की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जगदम्बिका पाल ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि कच्ची तेल की कीमतें $88 से बढ़कर $119 प्रति बैरल हो गई है, जिसका सीधा प्रभाव उर्वरक, गैस और परिवहन पर पड़ रहा है। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही, एलपीजी संकट पर चर्चा की मांग सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद फिर सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बयान दिया, जिसमें उन्हें पद से हटाने की मांग की गई थी। इसे सदन ने कल ध्वनि मत से खारिज कर दिया था। अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट किया कि चाहे सदन का नेता हो, विपक्ष का नेता हो या कोई अन्य सदस्य, सभी को सदन में केवल नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार बोलने का अधिकार है।
सदन में जब भी लोकमत के किसी विषय को, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो या माननीय मंत्रीगण हो, उनको भी अगर वक्तव्य देना होता है तो नियम 372 के तहत अध्यक्ष से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होती है। उसके नोटिस के बाद ही वो अपने वक्तव्य दे सकते हैं। किसी माननीय सदस्यों को नियमों से परे जाकर बोलने का विशेषाधिकार इस सदन में नहीं है।
राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आश्वासन दिया है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हुए कथित हमले की व्यापक जांच कराई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। फारूक अब्दुल्ला पर कल रात एक शादी समारोह में जानलेवा हमला हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि कृषि, विशेषकर कृषि खाद्य प्रणालियों में कार्यरत महिलाओं के नेतृत्व को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में आज कृषि खाद्य प्रणाली 2026 में महिलाओं की भूमिका पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने महिला नेतृत्व वाली विकास रणनीति अपनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम के गुवाहाटी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लगभग 9 करोड़ 32 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,640 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। ईरान ने फारस की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया है और संयुक्त अरब अमीरात में विमानन ढांचे पर हमले की कोशिश की है। और खेलों में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में आज भारत के किरण जॉर्ज का मुकाबला हांगकांग के जेसन गुनावन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।